नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के संसद सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इथियोपिया के बीच 2000 वर्षों से भी अधिक पुराने संबंध हैं। प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित करने के लिए इथियोपिया का आभार व्यक्त किया।
एंड आई कम टू यू विद डीप रिस्पेक्ट फॉर योर पार्लियामेंट, योर पीपल एंड योर डेमोक्रेटिक जर्नी। On behalf of the 1.4 billion people of India, I bring greetings of friendship, goodwill and brotherhood. Tena istilin salam.
प्रधानमंत्री ने कहा कि इथियोपिया में आज भारतीय कंपनियां सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि इथियोपिया के व्यापार और वाणिज्य के साथ ही रक्षा सहयोग को भी आगे बढ़ाएंगे और कृषि, मृदा स्वास्थ्य, तकनीक और जलवायु क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि तकनीक और नवाचार से कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अदीस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान 8 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक संबंधों के स्तर तक उन्नत करने से भारत और इथियोपिया के बीच सदियों पुराने संबंधों को नए आयाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली ने सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। भारत और ओमान राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने और सदियों पुराने व्यक्तिगत संबंधों का जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम से ओमान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। दोनों देश आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करते हैं और इससे निपटने के लिए एक दूसरे के साथ हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक वीबीजी रामजी को कल लोकसभा में पेश किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इससे ग्रामीण परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है।
इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण विकास की एक ऐसी संरचना स्थापित करना है जो कि भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हो। यह विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास की तीव्र गति को और बढ़ावा देगा, साथ ही रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाएगा। विधेयक में खेती के मौसम में खेतिहर श्रमिकों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने का विशेष प्रावधान किया गया है। विधेयक के तहत मजदूरी दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी और अधिसूचना जारी होने तक मौजूदा मजदूरी दरें ही लागू रहेंगी। यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विधेयक में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने 2000 किलोमीटर से ज्यादा रूट पर कवच सिस्टम चालू कर दिया है। यात्रियों और ट्रेन संचालन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच शुरू किया गया है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने ये बात कही। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 2024-25 में देश में कोयला उत्पादन पहली बार लगभग 1 अरब टन तक पहुंच गया है। लोकसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में कोयला उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने राज्य नारकोटिक्स विरोधी टास्क फोर्स के साथ समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने और मादक पदार्थ के सेवन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया के प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान पर जोर दिया। एनसीबी के तीसरे क्षेत्रीय निदेशक सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय निदेशकों से बातचीत करते हुए महानिदेशक ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क को निशाना बनाना ब्यूरो की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।